आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि मस्त हैं, है ना? चलिए ठीक है, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सावन, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 की किताब अर्थशास्त्र की, जिसका आखिरी अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा और उसका आखिरी पार्ट। दो पार्ट में हमने चर्चा की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे काम करती है, बफर स्टॉक कैसे काम करता है, और फिर वो चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, एक चीज़ तो होती है, जब आप कोई काम करेंगे तो आपको उसमें खामियां भी निकलेंगी, उसकी आलोचना भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सारे रंग हरे हैं, कुछ मामले में वो बेहद असफल साबित हुए हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि ये समस्याएँ क्या क्या हैं, और आप जानते हैं कि समस्याओं से भी बढ़ के है कि हम उनका समाधान कैसे करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जब आप फिर से पढ़ रहे हों तो प्लीज़ भारत का मैप आप आगे रख लें, ताकि आपको समझ में आएगा कि चीज़ें, जब इसमें राज्यों के नाम आएंगे तो फिर चीज़ें आपके समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, फोटोग्राफिक इमेज का अपना महत्व होता है, इसी वजह से आप फिल्में बहुत दिनों तक नहीं भूलते हैं, क्योंकि दिमाग हमारे चीज़ों को इमेज के रूप में याद रखता है। जैसे मान लें कि अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि काउ इज ग्रेजिंग, तो जो इंग्लिश नहीं जानते उनके दिमाग में कुछ भी नहीं उभरेगा, लेकिन जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि काउ। तो अगर हिंदी में मैं कह दूं कि गाय चर रही है, तो फिर आपके दिमाग में और स्पष्ट हो जाएगा, अच्छा गाय, तो गाय कैसे आपके दिमाग में उभरा? गौर कीजिए, आपके दिमाग में गाय का एक चित्र उभरता है, तो भले आपको पता ना चले, लेकिन चूंकि आपने गाय देख रखी है तो वो आपके दिमाग में आ जाता, ठीक है गाय चर रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि लैरक्स इज ग्रजिंग, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि लैरक्स क्या है। वैसे स्पेनिश भाषा में गाय को लैरक्स कहते हैं। अब देखिए, जो स्पेन वाला आदमी है वो तो समझ जाएगा क्या कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि लैरक्स कहने से उसके दिमाग में एक फोटो उभरी, गाय कहने से नहीं उभरी, गाय तो एक वर्ड। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा मैप लेके रखें, और फिर अगल बगल जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में फोटो बनती है, इमेज बनती है, आप देखते हैं कि PDF है, अच्छा ठीक है ये PDF है ना, तो वर्ड से ज़्यादा आपके दिमाग में उसकी छवि उभर जाती है। फिर आप देखेंगे PDF में एक दुकानदार बैठा है, अब वो अनाज दे रहा है, लोग अनाज लगे हुए हैं, कार्ड दे रहे हैं, कार्ड को नोट किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं, है ना? आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने बातों में नहीं उलझाऊंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी, और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 के देश में 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में दो विशेष योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। देखिए, अब सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो ठीक है उन्होंने स्टार्ट कर दी, लेकिन पहले ऐसा था कि न कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, जो चाहे खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ कि सरकार पर बोझ बढ़ने लगा कि देखिए पूरी जनता का खर्च सरकार नहीं चला सकती, आमदनी उनकी भी सीमित होती है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, जिनकी आय अच्छी है उन्हें हम क्यों उपलब्ध कराएं, वो तो मार्केट से खरीद लेंगे अपना। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, अब इसको फोकस कीजिए। देखिए, अगर आप बहुत सी चीज़ें बिखरा देंगे, एक बार में कई काम करने लगेंगे, तो ना इधर होगा ना उधर होगा। मान लें आप गाना भी चला रहे हैं, TV भी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो कुछ भी संभव सही से नहीं हो रहा है। हालांकि काम होता हुआ तो दिख रहा है कि तीन काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि अब हम टारगेट मोड पर चलेंगे। तो टारगेट किनको किया जाए भाई? तो जो गरीब है उनको टारगेट सरकार ने कर लिया कि ये गरीब है, ये इस एरिया में ज़्यादा गरीब रह रहे हैं, इस ब्लॉक में ज़्यादा गरीब रह रहे हैं, तो यहाँ शुरू कर दो। तो ठीक है भाई, यहाँ शुरू कर दिया गया, वहाँ शुरू कर दिया गया, और दूसरे जगह तो वहाँ भी तो गरीब हैं लेकिन वहाँ अमीर भी हैं, तो फिर क्या किया जाए, अगर गरीब को देंगे तो अमीर को भी देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि अमीर को भी देंगे, लेकिन अमीरों की कीमत ऊंची रहेगी, जो बाजार रेट है उससे 1-2 रुपये ही कम रहेगी। तो अब सोचिए जब इस तरह की स्थिति है तो बहुत सारे लोग जिनकी आय अच्छी है वो वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। कौन लंबी कतार में लगता है, चलो मार्केट जाते हैं, 1-2 रुपये का अंतर हम ले आते हैं। तो इस तरह से सरकार ने हतोत्साहित किया कि जो अमीर हैं वो इससे दूर रहें। अब जो गरीब थे उनमें भी कोई बहुत गरीब था, गरीबों में भी गरीब है, मान लें कि ठीक है गरीब व्यक्ति है, उसको 2 बच्चे हैं तो किसी तरह उसका रोजगार चल रहा है। अब जो 8-8 बच्चों का बाप है वो तो और गरीब है, और 2-4 फैमिली उसके यहाँ है। तो सरकार ने ऐसे लोगों को कहा कि ये बहुत गरीब हैं, तो अंत्योदय योजना उठाई कि इनको बहुत ज़्यादा अनाज दो, इनको और ज़्यादा चीज़ें दो, ताकि ये धीरे धीरे अपनी गरीबी ख़त्म कर सकें। दूसरे क्षेत्र में सरकार ने दिखाया कि ठीक है इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बूढ़े हैं, लाचार हैं, चल फिर नहीं रखते, तो फिर अन्नपूर्णा योजना लगाओ कि इन्हें भी चीज़ें दो, क्या खाद्य दो, और बहुत कम कीमत पर दो। इससे क्या होगा कि ये भी सुरक्षित रहेंगे। और देखिए ठीक है कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, अब देश के संसाधन में योगदान नहीं दे सकता, लेकिन ये मत भूलिए कि उसने अपनी पूरी जवानी देश के नाम की। तो सरकार को भी ये फर्ज बनता है कि हम उनका जितना हो सके उचित रूप से देखभाल करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। मतलब 100 में 75 परिवार को सरकार ने कहा कि अनाज सस्ती कीमतों पर अवेलेबल होंगे, और शहरों में ये 50% रहेगा। क्यों रहेगा इस पर मैं नहीं जाता हूँ। और सरकार क्या क्यों करना चाह रही है, सस्ते दरों पर जब हम खाद देंगे और पोषण संबंधी सुरक्षा देंगे तो एक मानव गरिमामय जीवन जी सकता है। मतलब वह तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और थोड़ा बहुत अगर ये रहे तो शिक्षित भी हो जाएगा। तो उसके जीवन में क्या होगी, गरिमा आएगी, डिग्निटी आएगी, लोग सम्मान करेंगे, है ना। तो सरकार ने इसको एक अधिनियम बना दिया। देखिए अधिनियम क्यों, तो आपने याद कीजिए पॉलिटिकल साइंस में हमने कहा था कि जो हम लिखत पढ़त में ले लेते हैं वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, और आपको उनको करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डन इट, अब टाल नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार ने एक अधिनियम 2013 में पारित कर दिया था। हाल में उन्होंने इस अधिनियम को और संशोधित किया है, जिसके बारे में मैं भी आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, आप इसे नेट या कहीं और से देखें। देखिए थोड़ा बहुत सर्च तो आप कीजिए, इससे चीज़ें क्या होती हैं कि ज़्यादा आसानी से आपके लिए अवेलेबल होंगे, और कई तरह के दूसरे क्षेत्रों से भी मुलाकात करते रहेंगे और दूसरी चीज़ों की जानकारी भी आपको मिलेगी। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज के अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों में के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है, तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। ये एक अद्भुत बात है। अब देखिए सरकार तो यही चाहेगी उसकी जनता कितनी सुरक्षित रहे, तो वो बहुत तरह के कार्य करेगी, ठीक है हम ये देंगे वो देंगे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है गवर्नमेंट के इस लक्ष्य को पाने में, अचीव करने में। कैसे किया, तो ठीक है भैया सरकार के जहाँ अनाज ज़्यादा है ठीक है वहाँ अनाज ज़्यादा है वहाँ से अनाज उठाइए, और जहाँ अनाज कम है वहाँ अनाज पहुँचा दीजिए। फिर सरकार ने कहा देखिए आप, मैंने आपको बताया था न्यूनतम समर्थन कीमत तय कर दिया, तो उससे क्या हो गया, किसानों के पास आय बढ़ गई, बिचौलिए बिल्कुल लगभग लगभग खत्म हो गए। अभी भी देखिए सक्रिय हैं, क्योंकि सरकारी योजनाएं ऐसी आ ही जाती हैं। अब बुआई के समय में घोषणा हुआ तो फिर आप जाइए बेचने, तो उसमें बहुत तरह के पछड़े हैं, FCI ये बोलेगी वो बोलेगी, फिर अब भुगतान किया जाएगा, तो बहुत से किसान आज ही झोंके व्यापारियों को ही बेच देते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो चीज़ें सिद्धांत रूप में है और जो चीज़ व्यवहार में है उनमें बहुत अंतर होता है। तो जब आप अगल बगल घूमेंगे, मुआयना करेंगे, तो ये अंतर पता चलेगा, और फिर इसी अंतर को कैसे भरा जाए, इस अंतर को कैसे भरा जाए, वही तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, वही जीनियस की निशानी होती है ना, कि जीनियस उस चीज़ों को भी देख सकता है जो आम लोग नहीं देख सकते। अब यहाँ पर आप देखिए एक आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये बताया गया कि देखिए कैसे 1992 तक गेहूँ का रेट क्या था, फिर 2013 तक देखिए जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गया तब तो आप देखिए 5 किलो खाद्यान्न की मात्रा तो भले घटी क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास उपज भी हो गई, लेकिन देखिए आप गेहूं का जो मूल्य है या चावल का मूल्य कभी 10 के ऊपर नहीं गया है, हमेशा 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, अब तो और सस्ता तक हो चुका है, 3 रुपये, 2 रुपये पे आ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है ये हम आगे देखेंगे। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और उसकी मोजा मानदंडों के अंतर को दर्शाती है। अब देखिए अति सर्वत्र वर्जित है। सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, किसानों को लगा कि ठीक है अच्छा और फसल उपजाओ, फसल और उपजाई, सरकार पर भी दबाव था किसानों की आय बढ़ानी है तो उन्होंने उसकी कीमतों को और वृद्धि कर दी और ज़्यादा। अब देखिए अब जब वृद्धि होने लगी तो पहले बड़े किसान उपजा रहे थे, अब छोटे किसान भी आ गए तो बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, गेहूँ चावल जो ज़्यादा जिनकी कीमत मिल रही थी वो उपजने शुरू हो गए। अब किसान तो मान लें कि जो खा रहा है वो 10 किलो खा रहा है तो 20 किलो तो नहीं खाएगा, लेकिन उपजा रहा था वो 20, अब वो 30-40 उपजा रहा है तो सारे को क्या करेगा, दे दो सरकार को, सरकार भी ले रही है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो बफर स्टॉक में रखे पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कहीं भुखमरी घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो उसके लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार हो सकता है, या हो सकता है कि सही समय पर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हूं, या सिर्फ इतना कमी हो कि वो अनाज देने लायक नहीं हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और इधर क्या है कि जो बफर स्टॉक है वहाँ चूहे खा रहे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब नीचे एक ग्राफ दिया गया है, आप उसे देख के समझिए कि देखिए भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बन सकता है, हम बहुत अच्छे देश हैं, लेकिन समस्या क्या है। देखिए एक समस्या भारत के भी क्या है, वर्ष जनवरी फरवरी तक दिया गया है और ये 1 जुलाई 2017 तक मान्य है। जनवरी में देखिए क्या तक बफर स्टॉक जो है कि एक नॉर्म है कि उतना होना चाहिए, और जो लाल बिंदु है उसमें एक्चुअल स्टॉक इतना है कि पूरे देश को अगर भुखमरी से बचाना है तो जनवरी में इसको लगभग 214 होना चाहिए था जो 357 तक है, अप्रैल में 210 होना चाहिए था लेकिन ये 381 है, जुलाई में आप देखिए कि होना तो चाहिए था 411 लेकिन ये चल गया 650, और फिर देखिए अगर अक्टूबर में है तो ये 307 और 542 है। यहाँ बच्चों मैं आपको ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि जुलाई में ये ग्राफ क्यों बढ़ गया अप्रैल से जुलाई के बीच में, आप खुद ही जानते हैं और खुद ही इस पर सोच के आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें कम चाहिए उनके लिए ज़्यादा क्यों, क्योंकि अब देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, 214 चाहिए 357 है, डेढ़ गुना लगभग है, 411 चाहिए 650 है, डेढ़ गुने, तो डेढ़ गुने के लिए क्या करना होगा आपको, ज़रूरत जितनी है उससे डेढ़ गुना अगर हम रखें तो फिर चीज़ें कैसे होंगी, डेढ़ गुना ज़्यादा हमारे पास स्टॉक है, अब उसके लिए अलग से बफर स्टॉक खोलिए, फिर उसके लिए अलग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाइए, फिर उतना अनाज आप करेंगे क्या, वो सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, सरकार को इधर घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ किसान और अनाज उत्पादित कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मूल्य अच्छा मिल रहा है, तो अब देखिए सरकार दोहरी स्थिति में फंसी हुई है। आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ये अब जो है मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप खुद कर लें क्योंकि बेहद ही आसान प्रश्न हैं और यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि चीज़ें किस तरह की हैं और मैं इन प्रश्नों को देख रहा हूँ तो आपको मुझे लगता है कि थोड़े से कॉमन सेंस से आप बना लेंगे। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अभी आप इधर जो दिया गया है एक डाटा आंकड़ा उसको देखें कि कैसे सार्वजनिक सबके था, फिर पिछड़े ब्लॉक, दीन वरिष्ठ नागरिक तक, और कैसे कैसे दाम में भी सरकार ने परिवर्तन किया। अंत्योदय योजना वालों को कहा गया कि 2-2 रुपये के हिसाब से आप दे दीजिए, 25 किलोग्राम दीजिए, फिर लगा कि नहीं और बढ़ाना चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, परिवार भी बढ़ गया होगा तो 35 कर दो, फिर उसके बाद कहा कि BPL परिवार वालों को भी सस्ता दे दीजिए। क्यों सरकार ऐसा करने लगी, ऐसे सरकार क्यों कर रही है। देखिए सीधे सीधे तो आपको लगेगा कि ठीक है सरकार अपना काम कर रही है, ऐसे हो रहा है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बफर स्टॉक में ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध है और सरकार को वो हटाना है, क्योंकि अब जब वो वहाँ पर है तो बोझ बन पड़ रहा है, नए नए कहाँ खोलेगी सरकार, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो सरकार सोच रही है कि 2-3 रुपये की दर से भी अगर ये चले जाता है, हट जाता है, तो ठीक है भैया लोगों को अनाज भी मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, भुखमरी का दौर कम हो रहा है। अगर मान लें उसे आप कहीं वो व्यापारियों को बेच भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है उनसे भी उनको आय मिल रही है, उससे वो खरीदेंगे, आय गतिमान होगी। तो ये थोड़ी सी जटिल चीज़ें हैं, मगर देखिए सरकार ऐसा कर रही है। सहायकी, अब देखिए सब्सिडी का नाम आपने खूब सुना होगा, बहुत बार सुनते हैं बिजली सब्सिडी दी गई है, डीजल सब्सिडी दी गई है। तो सब्सिडी क्या है? सहायकी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम रखा किया जा सकता है। अब मान लें कि 1 किलोग्राम चीनी है, सरकार ने आपको 20 रुपये उपलब्ध करा दी, कंपनी कहेगी हमको तो 35 चाहिए, अब 15 रुपये कौन देगा? तो आपकी जगह सरकार कहेगी भैया हम दे देंगे, तो ये आपकी सब्सिडी हुई। मतलब जब सरकार आपके बिहाव पर पेट करे ताकि आपको चीज़ें कम में अवेलेबल हो सकें। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, अनाज वितरण की हालत सुधरी। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए इसमें तो वही सारी समस्याएं गिना दी गई हैं जो मैं आपको इससे पहले कह रहा था कि चीज़ें उसी तरह की बिल्कुल विचित्र स्थिति सी भारत में बन गई है। कम न्यूनतम समर्थन कीमत आप कम करेंगे नहीं, बफर स्टॉक में चीज़ें बढ़ रही हैं, एक्स्ट्रा पैसा सरकार को उस पर खर्च हो रहा है, कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें है बच्चों की, मान लें किसी दोस्त से कर्ज लेते हैं और फिर मिठाई खाते हैं ये, और दोस्त को भी खिलाते हैं कि चलो भाई कर्ज भूल जाएगा, मिठाई खिलाओ इसे, ऐसा तो होने वाला बिल्कुल नहीं है। देखिए चीज़ें भी इसी तरह से बनती जा रही हैं। सरकार उस शराबी की भांति हो गई जो अपने झोपड़ी में आग लगा के ताप रही है, चलो ठीक है तत्काल तो राहत मिली, उसे पता ही नहीं चल रहा है किसकी झोपड़ी में आग लगा, उसे बस आग से मतलब है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत गंभीर हो गई हैं। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना ज़्यादा अनाज रखने की क्या ज़रूरत है जब हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, चीज़ों हमारे पास इतना तो है कि हम देश को बचा सकते हैं, चाहे कितनी भी भुखमरी आ जाए, फिर इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे आपकी बर्बादी बढ़ रही है, संसाधन व्यर्थ हो रहे हैं, आपके पैसे भी जा रहे हैं। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूँ और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया। प्यारे बच्चों, मैं NCERT का जबरदस्त फैन हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से उन्होंने चीज़ों को समझाया और कैसे जोड़ा है, कितनी जमीनी बात उन्होंने लिखी है कि देखिए एक तो सरकार ने समर्थित कीमत बढ़ा दी, तो ठीक है भैया जो मोटे अनाज थे, गेहूं था, बाजरा था, ज्वार था, मकई थी, वो गरीबों का मुख्य भोजन था। क्योंकि गेहूं चावल में अब देखिए चावल बनाएंगे तो दाल सब्जी को बहुत सी चीज़ें बनाइए आप, रोटी के साथ भी बहुत चीज़ें हैं, फिर उनको पिसवाना पड़ेगा। अब मकई वगैरह में सत्तू भी चल जाती है उनकी, ठीक है रोटियाँ भी बन जाती, तो वो प्रमुख भोजन था। तो अब किसानों ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं? तो गेहूं और चावल के। उनके क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं? कि बहुत से राज्य थे जहाँ हरित क्रांति आई और वहाँ गेहूं चावल हुआ, तो उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि आप यहाँ का लीजिए। अब सरकार को भी किसानों की मदद करनी थी तो वो लेने लगे तो और ज़्यादा उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि इनकम बढ़ रही है तो और बड़े खेतों पर करने लगे, खूब खाद देने लगे, बहुत ज़्यादा सिंचाई का उपयोग करने लगे। तो खाद के कारण ज़मीन जहरीली हो गई, ज़्यादा पानी निकालने के कारण ज़मीन की निचले स्तर पानी का सूखने लगा, इससे एक और आपदा बढ़ गई, एक और समस्या बढ़ गई। तो देख रहे हैं किस तरह से समस्याएं लगातार सामने आती जा रही हैं। और इसीलिए मैं एनसीईआरटी की इस वजह से बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत दाद देता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाती है। और प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यकीन मानिए कि ये चीज़ें भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। बहुत ही ज़मीनी लेवल, बिल्कुल ग्राउंड लेवल जिसको आप कहते हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट की गई है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। FCI की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। कीमतें बढ़ा दीजिए, सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जो वापस में चीज़ें आ रही हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई हैं। उसके अलावा अब बहुत सी चीज़ों को आपको FCI को लाना पड़ रहा है कि ठीक है यहाँ पर डाल दीजिए। भंडारण करने के लिए नई बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, मजदूरी दी जा रही है, बहुत से ट्रकों को लोड किया जाता है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। बहुत ज़्यादा तामझाम में खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी की जा रही हैं। NSSO ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारतीय में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम प्रति वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। नगरीय भारत में भी प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगुनी हुई और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। PDS गेहूँ की प्रति माह व्यक्ति प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दुगुना हो गई। अब स्थिति विचित्र है, हम कम खा रहे हैं और सरकार ज़्यादा दे रही है और खपत भी दुगुना हो रहा है। मतलब ये तो उसी भांति हुआ कि आप एक डांस क्लास में जाते हैं और 3-4 महीने डांस क्लास में आपके लगातार जा रहे हैं और आपके पूरी कॉपियां भर गई, आपने गार्जियन से उसके लिए पैसे की मांग की, कॉपी नहीं है, मेरी कॉपी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? तो मैं डांस देखने जाता था। पता है कैसी विचित्र सी बात है कि कोई डांस देखने जाने से भला क्या हो सकता है, बिल्कुल अजीब सा पागलपन। अब एक उदाहरण से मैं आप समझाता हूँ, छोटा सा चुटकुला, थोड़ा सा आपको भी हंसी आएगी। एक शिक्षक हर एक स्कूल में जाते थे और बहुत बड़े शिक्षक थे, सरकार ने उनको रखा था कि आप स्कूलों में जाके परखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और बहुत नाम सम्मान भी था। ये सुना जाता था कि वो जिस स्कूल में जाते थे और जो जो सवाल पूछते थे, आज तक किसी स्कूल में उसका उत्तर नहीं आया था। और जिस स्कूल में उसका उत्तर नहीं आता था, वहाँ के जितने भी बच्चे थे या प्रधानाध्यापक थे, जो भी थे, उनको सबको सजा मिलती थी। वह एक स्कूल में गया। जब वो स्कूल में गए तो उन्होंने पूछा कि प्यारे बच्चों, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि परखने के लिए एक चावल काफ़ी होता है, हांडी में भात पकी की नहीं। तो बच्चों ने कहा हाँ पूछिए। उन्होंने कहा कि बताइए, एक हवाई जहाज दिल्ली से बम्बई जा रहा है और इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बताइए मेरी उम्र क्या है। अब देखिए, बुझी तरह प्रश्न था कि हवाई जहाज उधर जा रहा है तो उम्र कैसे निकाला जाए। सब चुप, प्रधानाध्यापक चुप, अध्यापक चुप, सारे बच्चे चुप। एक 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर आपकी उम्र 42 साल है। अध्यापक पहुंचा करेगा कि तुम्हें कैसे पता, कैसे पता, कौन सी ट्रिक यूज की, एकदम सही में मेरी उम्र 42 वर्ष है, कैसे तुम्हें पता चला। बच्चे ने कहा सर मेरा एक बड़ा भाई है, वो आधा पागल है और उसकी उम्र 21 साल है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी। अब देखिए क्यों ऐसा हो गया। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जिसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को भी बेच नहीं पाती तो FCI के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूँ, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले TPDS की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। APL परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो डीलर साहब हैं वो इसी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अनाज महंगा है, अब नहीं बेचेंगे, कहीं और बेच दिया। अब सरकार ने तो उनको अनाज दे दी, उनको तो उधर मिल ही गई कीमत की। ठीक है भैया, आपको मिल गई, सरकार ने दे दिया 100 किलो दे दिया कि 10 रुपये के हिसाब से आप ले जाइए, या फिर मान लीजिए कुछ के हिसाब से भी दे दिया, अगर इतने पर बेचेंगे तो मैं आपको इतना पर ही दे रहा हूँ लाभ के लिए। अब वो आए मान लें कि 3 रुपया बेचना है, सरकार उनको 1.5 रुपये दी, आधा रुपया लागत लग गया उनको, तो अब वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे 2 रुपये में तो मिला है, अगर बाज़ार में 6 रुपये में भी दे रहा है तो बेच दो, तो कैसे बेचेंगे? किन्हीं का घपला करेंगे, ये कार्ड वालों को कुछ कम देंगे। जैसे मेरे यहाँ होता है कि अगर मान लीजिए कि 15 किलो का अनाज है तो 1-7 किलो गेहूँ और 8 किलो चावल, तो 1-1 किलो डीलर साहब रख लेंगे। क्यों रख लेंगे भाई? तो ऐसा तो होता ही, आपको तो फ्री में ही दे रहे हैं, वरना कह देंगे आपका नाम नहीं है, ये नहीं है। तब एक किलो दो दो किलो बचा दिया, 2000 किलो है, बचा लेंगे, हो गए 15-20 हज़ार रुपये। एक तो ये हो गया, दूसरी बात है कि वो बेचना जो चाहते हैं तो खुले बाज़ार में बेच देते हैं, या फिर जो उन अनाज है वो बहुत घटिया किस्म का होता है, क्वालिटी उनकी बहुत गिरी होती है, तो इस वजह से भी लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। तीसरी समस्या एक और है कि पहले ठीक है अमीर गरीब जो था सब खरीद सकता था, सरकार ने कहा कि नहीं हम सिर्फ गरीबों को खरीदने देंगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि मान लीजिए कि आप उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, बस गरीब से थोड़ा ऊपर है, तो वो भी वहाँ जाके फंस जाते हैं कि कैसे खरीदें, बहुत ज़्यादा रेट है। और जो अमीर लोग हैं वो तो जो ऊँचाई वर्ग है वो खरीदना ही नहीं चाहते। तो अब जब आप बेच ही नहीं पाएंगे तो गोदाम में अनाज तो बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। कल्पना कीजिए कि अगर नाली जाम होगी तो क्या होगा, सड़क में पानी आएगा, वही हाल FCI का है। जो भी उसके नाले हैं, जो भी उसकी PDS प्रणाली है, वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उससे वो अनाज बिक ही नहीं रहा है। और अनाज बिक नहीं रहा है तो यहाँ पे दुकानदार को क्या है, दुकानदार तो खुले बाजार में बेच ही देता है किसी न किसी तरह से। वो अब लोग लेना नहीं चाहते और वो तो दिखा रहे हैं ले रहे हैं, लोगों को भी अवेयर नहीं रहता। मान लीजिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कीमत है तो मैं बाजार से क्यों ना खरीदूँ, क्यों जाऊँ, मेरा कार्ड बना हुआ है, सरकार को नहीं पता कि मैं नहीं ले रहा हूँ, वो तो भेज देगी, वो तो वहाँ से भेज देगी। अब भेज देगी तो चीज़ कीमतें बड़ी कम पे भेजेंगी, 4 रुपये की मान लीजिए चीनी 15 रुपये भेजी, और दुकानदार साहब ने जाकर उसे 30 रुपये बेच दिया, मगन है वो भी, जो खरीदने वाला है वो भी है कि भाई 30 रुपये आ गया बेचो 40। तो इस तरह से एक संगठित लूट होती है। और जो भी दूसरे और भी लोग हैं, सरकारी महकमा हो जाए, सारे इसमें मिले रहते हैं। अब देखिए उपाय क्या है। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में जितने राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में एक श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। सहकारी समिति क्या हुई? तो ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, एक उसमें मतलब 10-20 लोग होते हैं जिन्होंने एक समिति बनाते हैं, तो उनमें से किसी का काम भंडारण काम बांट दिए जाते हैं और वो फिर वो करते हैं। इसके उदाहरण गुजरात का अमूल ले लीजिए, दिल्ली की मदर डेयरी ले लीजिए। तो ये क्या होता है, जब 20-25 लोग रहते हैं तो संगठित रहते हैं, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाता और सारी चीज़ें बहुत आसानी से जो सरकार ने रेट तय रखी है, जो उचित मूल्य है उस पर लोगों को उपलब्ध होती है। तो लोग भी ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं तो कुछ लाभ जो बचता है वो इन सबों का होता है। ज़्यादा बिक्री के कारण इन सब की रोजी रोटी भी चल जाती है। अमूल ने तो भारत में श्वेत क्रांति तक ला दी है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। EDS गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में EDS की कोशिश रंग ला रही है। EDS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है। देखिए सारा चीज़ ब्लैंक ही नहीं है, है ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि चीज़ें बढ़ें, आगे बढ़ें, कैसे होगा। तो उन सबों के लिए कुछ EDS आ गई है, ठीक है, जितने भी NGO हैं वो आ गए हैं, उन्होंने अपना अनाज बैंक खोल रखा है कि ठीक है आप उनके उस पीडीएस दुकान पर मत जाइए, वो तो गलत करते हैं, तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे और बहुत ही सस्ती कीमत पर करवाएंगे। तो फिर भारत में क्या हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है, सहकारी समितियाँ हो जाएं, गैर सरकारी संगठन हो जाएं, एनजीओ हो जाएं, लोग आ जाएं, तो ये सब लगातार मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के इतने बड़े स्कीम को, भारत 136 करोड़ के लोगों के देश को भूखा नहीं रहने दिया जाए, यहाँ जो खाद्य सुरक्षा है उसे उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रिय बच्चों, आज हमने पढ़ाई की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष समस्याएं क्या क्या हैं। तो आपने देखा कि राशन सड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खरीद हो जाती है, कीमतें बहुत देनी पड़ती हैं। फिर हमने यह भी देखा कि इसमें उपाय क्या क्या हैं, तो सहकारी समितियां आ गई हैं, बहुत से एनजीओ इसमें मिलकर काम करते हैं, जिस वजह से ये संगठन धीरे धीरे अपना ये जो कार्यक्रम है सरकार का वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। लेकिन देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे अपने हक के प्रति, और ये जो भ्रष्टाचार कहते हैं जो हमें खुद ही मौजूद है, हम खुद ही चाहते हैं कि ठीक है भैया मेरे नाम का 10 किलो अनाज तो आ रहा है, अब मेरी स्थिति ऐसी है कि 10 किलो नहीं भी हो तो काम चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है चलो डीलर साहब 8 किलो दे रहे हैं ना, मैं कैसे भ्रष्टाचार करता हूँ कि मैं तो 8 किलो ले लेता हूँ, ठीक है 2 किलो रख दो डीलर साहब के लिए, तो डीलर साहब अपना बेचेंगे खाएंगे, अब आप 8 का क्या करेंगे, तो आप 8 लाएंगे। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो पीडीएस से सामान उठाते हैं, वहाँ से वो अनाज लेते हैं, चावल लेते हैं, और सामने की दुकान पर आगे जाके राशन दुकान पर बेच देते हैं, बिल्कुल बेच देते हैं वो। और कैसे, मान लें वहाँ से उन्होंने 3-4 रुपये के हिसाब से उठा लिया, वहाँ जाके वो 12 और 14 में बेच देते हैं। अब सोचिए ये 8, अब फिर वही अनाज सरकार के पास जाता है और सरकार फिर उस 18 में खरीदती, दुकान ने तो 10 में ले लिया, 18 में सरकार को बेचा, सरकार ने फिर बेचा, फिर वही चक्र चलते रहता, सरकार को घाटा पे घाटा होता चला जाता है। और हम भ्रष्टाचार इससे सोचते हैं कि चलो हमें फ़ायदा हुआ, हम तत्कालिक लाभ नहीं देखते, हम उन व्यापारियों को लाभ दे देते हैं जो वहाँ होते हैं, जो ये काम करते हैं, और इससे समाज दिनों दिन नुकसान में ही जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सावन आपसे विदा लेता हूँ। अर्थशास्त्र किया यह आखिरी अध्याय था, आखिरी पाठ था। उम्मीद करता हूँ कि अर्थशास्त्र के पूरे सफ़र में आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, और अगर मान लें नहीं आया, चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसके लिए एक बार फिर से आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रयास करें, प्लीज़ ऑडियो को 1-2 बार सुने, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रिय बच्चों, मैंने आवाज़ के माध्यम से ही, मैंने आप लोगों को देखा नहीं है आप में से कौन इसे सुन रहे होंगे, कौन नहीं सुन रहे होंगे, कौन मेरे बारे में क्या सुन रहे होंगे, किसे गुदगुदी लगी मेरे बातों से, किसे हंसी लगी, किसे थोड़ा सा बोर लगा, तो जिन्हें बोर लगा उनसे माफ़ी चाहता हूँ, जिसे गुदगुदी लगी उनका धन्यवाद देता हूँ, जिन्हें कुछ समझ में आया, एक भी चीज़ें मेरी वजह से समझ में आई, उन सबों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मैं आपका दोस्त सावन फिर कभी मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।